ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेता माधव कुमार नेपाल के बीच हुई मुलाकात। पार्टी में जारी विवाद समाधान की दिशा में। जनता समाजवादी पार्टी के विवाद निरूपण के लिए निर्वाचन आयोग ने किया इजलास का गठन। निषेधाज्ञा में ढील दिए जाने के साथ कोरोना संक्रमण की दर में हुई बढ़ोतरी। देश भर में आज 2979 नए लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि, जबकि महज 1333 मरीज हुए संक्रमण मुक्त। देश भर में 28 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। और हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसी की गोली मारकर कर दी गई हत्या। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेता माधव कुमार नेपाल के बीच मुलाकात की गई। मुलाकात में भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौड़ेल और सुरेंद्र पांडे की भी सहभागिता रही। वार्ता को सकारात्मक बताया गया है। नेकपा एमाले में जारी विवाद समाधान के लिए गठित कार्यदल विवाद समाधान के नजदीक पहुंचा है। आज सिंह दरबार में अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष के नेताओं की सहभागिता में हुई इस कार्यदल की बैठक के बाद दोनों पक्षों के नेताओं ने यह जानकारी दी। कार्यदल के सदस्य एवं पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप गेवाली ने पार्टी में दिख रहे सभी विवादों का समाधान कल तक होने का विश्वास जताया। इसी तरह कार्यदल के सदस्य एवं नेता गोकर्ण बिष्ट ने भी विचार विमर्श को सकारात्मक बताते हुए पार्टी के विवादों को जल्द ही अंत होने में खुद को विश्वस्त बताया। निर्वाचन आयोग ने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल की विवाद निरूपण करने के लिए इजलास का गठन किया है। आज हुई आयोग के पदाधिकारियों की बैठक में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया के नेतृत्व में 5 सदस्यों के इजलास का गठन किया है। सुनवाई के लिए आयोग ने आने वाले सावन 3 गते रविवार को दोनों पक्षों को बुलाने का निर्णय किया है। ये बात आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ ने दी। उन्होंने बताया कि कल दोनों पक्षों को बुलाकर सहमति करवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन सहमति न बन पाने के बाद इजलास का गठन किया गया। पूर्व माओवादी नेताओं के नेता नेकपा माओवादी केंद्र के दल पंजीकरण को खारिज करने की मांग करते हुए निर्वाचन आयोग में आवेदन किया है। अधिवक्ता सरोज बुराथोकी द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पेश करने के लिए आज अधिवक्ता बुराथोकी के साथ एमाले 2 नेता लील बहादुर थापा और रामचंद्र मंडल आयोग पहुंचे थे। इस बात का उल्लेख के साथ कि हर 5 साल पर महाधिवेशन करने के प्रावधान को दरकिनार कर विक्रम संवत 2069 के बाद से अब तक महाधिवेशन नहीं हुआ और 2073 सावन 13 को पार्टी एकता के नाम पर आयोग को झूठा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। उन नेताओं ने माओवादी केंद्र की एकता खारिज करने की मांग की है। नेपाल में कोरोना संक्रमण की दर पिछले दिनों में बढ़ती गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के क्रम में आज प्रवक्ता डॉ कृष्ण प्रसाद पौड़ेल ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि आज देशभर किए गए पीसीआर टेस्ट में से 26.5% लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये बताते हुए कि दैनिक परीक्षण दर के मुताबिक संक्रमितों की संख्या बढ़ते क्रम में है। उन्होंने कहा कि आज सबसे अधिक कर्नाली प्रदेश में 50% और गंडकी प्रदेश में 39.5% लोगों में संक्रमण पाया गया। बता दें कि आज देश भर में कोरोना के कुल 2979 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महज 1333 मरीज ही संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं 28 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित होकर मरने वालों की संख्या 9291 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी है। ललितपुर में वेरोसिल वैक्सीन का दूसरा डोज आगामी शुक्रवार और शनिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा 60 से 64 उम्र समूह के नागरिकों को वेरोसिल वैक्सीन का पहला डोज आषाढ़ 25 और 26 को दिया जाएगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
हेलो, हाम्रो बिहेको शपिङको लागि आएको नि बाबा मम्मीसँग। बाबा मम्मी यति हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ होला उहाँले? मलाई त कस्तो लाज लाग्छ, भरे राति बोलौँ न ल।
अहिले फ्री वाइफाई छ क्या अफिसमा, बुझ न, भरे कसरी गर्नु?
मेरो हुनेवाला श्रीमानज्यूलाई यति पनि थाहा छैन कि क्या हो? एनटीसी को अनलिमिटेड नाइट भोइस प्याक राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म।
अब रात तपाईको नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने देश की राजनीतिक अवस्था, संविधान क्रियान्वयन, कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति लगातार समसामयिक विषयों में सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। इसके अलावा सांसदों ने कोरोना की वैक्सीन सभी को देने के लिए सरकार को पहल करने, जातीय भेदभाव करने वालों को कार्यवाही के दायरे में लाने, देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और भूस्खलन से हुई क्षति का तथ्यांक संकलन कर पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत सहित पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। इसी तरह बैठक में प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री नीलानाथ श्रेष्ठ ने लोक सेवा आयोग के 61वें वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 को पेश किया। बैठक में विधान व्यवस्थापन समिति के सभापति परशुराम मेघी गुरुंग ने नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 और नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 संबंधी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राष्ट्रसभा की अगली बैठक आगामी रविवार को दोपहर 1 बजे होगी। पर्वत की कुशवा नगर पालिका की सुंदरी नदी में आई बाढ़ के वेग में बह गई गाड़ी के साथ लापता हुए 3 में से 2 लोगों की स्थिति अभी भी अज्ञात है। हालांकि गाड़ी मोदी नदी के बीच बने गड्ढे से बरामद हो चुकी है, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं। पुलिस ने उनकी तलाश जारी रखी है। ये बात जिला प्रहरी कार्यालय पर्वत के DSP शिवराज बुढ़ाथोकी ने बताई। बीती रात नदी पार करने के दौरान गाड़ी में सवार लामा कंस्ट्रक्शन के साइट इंचार्ज राजाराम आचार्य, चालक इंद्र थारू और स्थानीय एक व्यक्ति लापता हो गए थे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थापलिया ने कहा कि संविधान और निर्वाचन संबंधी कानून में विद्यमान व्यवस्था अनुरूप समावेशी प्रतिनिधित्व कराने के विषय में राजनीतिक दलों को और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख आयुक्त थापलिया ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान के समानुपातिक, समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धांत पर आधारित राज्य व्यवस्था की ओर परिकल्पना की है। इसके संदर्भ में संगठित संरचना और प्रतिनिधित्व भी इसी के अनुसार व्यवस्थित करने के प्रति राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षण कराना चाहिए। कार्यक्रम में संघ, प्रदेश और स्थानीय तहों का प्रतिनिधित्व कर रहे राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। हैती में राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे की बीती रात उनके निजी आवास में गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में पत्नी मार्टिने मोइसे गंभीर रूप से घायल हुई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी देश के अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने दी है। उन्होंने घटना को घृणास्पद, अमानवीय और बर्बर करार दिया है। राष्ट्रपति की हत्या के बाद हालात पर नियंत्रण के लिए नेशनल पैलेस और अन्य संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। क्लाउड जोसेफ ने कहा कि देश की प्रथम महिला को भी गोली मारी गई है, लेकिन इस हमले में उनकी जान बच गई है। उन्होंने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। जोसेफ ने इसे घिनौना और अमानवीय कृत्य करार दिया है। उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि वे अपना संयम बनाए रखें। जोसेफ ने कहा कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के उपाय किए गए हैं। लोकतंत्र की जीत होगी। बता दें कि म्यांमार के बाद फरवरी में एक और देश हैती में तख्तापलट की साजिश हुई थी। यहां के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे ने यह दावा किया था। उस वक्त पुलिस ने 20 से अधिक ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने उनके कहा था कि उनकी हत्या करना चाहते थे और फिर देश में तख्तापलट करने की कोशिश में जुटे हुए थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेता माधव कुमार नेपाल के बीच हुई मुलाकात, पार्टी में जारी विवाद समाधान की दिशा में। जनता समाजवादी पार्टी के विवाद निरूपण के लिए निर्वाचन आयोग ने किया इजलास का गठन। निषेध आज्ञा में ढील दिए जाने के साथ कोरोना संक्रमण की दर में हुई बढ़ोतरी। देशभर में आज 2,979 नए लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि, जबकि महज 1,333 मरीज ही हुए संक्रमण मुक्त। देशभर में 28 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत और हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे की गोली मारकर कर दी गई हत्या। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।